क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे इस जिला के जिलाध्यक्ष श्री ओम राघव जी, जिला के महामंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भाई कुलदीप सिंह बोटोला जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई सुभाष भट्ट जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पार्वती नेगी जी, उपाध्यक्ष हेमा जी, सुषमा कुमार जी, श्रीमती मनसा गैरोला जी, आदरणीय मनोज सिंह रावत जी, ग्राम प्रधान भाई राजेश कुमार जी, ग्राम प्रधान बद्रीपुर कुसुम पटेल जी, हमारे पार्षद राजेंद्र रावत जी, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाई मोहित वाली जी, हमारे पार्षद आदरणीय कैप्टन नेगी जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, आदरणीय एम आर बहुगुना जी, तिलोक सिंह बेद जी, महानगर के संयुक्त नितिन जी, पूर्ण सिंह जी, आदरणीय रामेश्वर लोधी जी, पूर्व प्रधान रवि वालिया जी और जग प्रधान नथनपुर जगदीश सिमाल जी, आनंद जी। यहाँ पे मैं बहुत चेहरों को देख रहा हूँ जो मेरे अधिकांश चेहर परिचित हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं। मैं आप सबको अभिवादन कर रहा हूँ और जो उपस्थित लोग हैं, जो इस सड़क जो आज यहाँ से सड़क जिसका आज शिलान्यास हुआ है, उस शिलान्यास होने वाली सड़क से जितने भी गांव, जितने भी लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं, उन सबको मैं आज बधाई देने के लिए आपके बीच आए। मेरी शुभकामना और आप सबको बधाई। अभी सुभाष जी से मैं बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि सड़क पर आप चार तो सरकारी स्कूल हैं और एक अच्छा चिकित्सालय भी है, एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, लगभग चार वेटिंग पॉइंट हैं और दो गैस गोदाम है जिसकी आपूर्ति पूरी देहरादून में होती है, बहुत सारे संस्थान और ये सड़क लगभग दून विश्वविद्यालय से भी जुड़ी है। ये खुशी है कि आज उस सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण हो रहा है। त्रिवेंद्र जी ने अभी बताया कि उन्होंने 2002-03 में इसको बनाया था यहाँ तक और उसके बाद आज ये सड़क अपने और विस्तार को ले रही है, उसे बढ़ा रही है और ये सड़क को लगभग 3,82,00,000 रुपए खर्च होंगे। चीफ साहब कितना और कितनी लंबी है?
3.3।
ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क भविष्य में साबित होगी और बहुत लंबे समय से इसकी मांग भी थी और मैं सोचता हूँ कि यदि आदरणीय त्रिवेंद्र जी इस बात से सहमत हों तो जो त्रिवेंद्र जी जो कारगिल के शहीद संजय गुरुंग है, तो यदि आप शहीद हों, जो शहीद आप संजय गुरुंग के पिताजी हवलदार आप मेहर सिंह जी, वो भी शायद 1965 की लड़ाई में उनका एक हाथ कटा था, टूटा था और उन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने अपना जीवन देश को अर्पित किया है, जो इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं और जिस नौजवान ने इस भारत माँ के माथे को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, इस सड़क का नाम संजय गुरुंग के नाम से भविष्य में जाना जाएगा। सरकार का ये निर्णय है और इसको पीडब्ल्यूडी विभाग जो कार्यदायी संस्था है इसको सुनिश्चित कर लेंगे तो अच्छा है। लगभग 25-30 हज़ार से भी अधिक लोग इस पूरी सड़क से लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, मेरी आपको शुभकामना। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारा प्रदेश देवभूमि का प्रदेश है। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हम इस राज्य को एक देश का मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, और आदर्श राज्य ये तभी बन सकेगा जब यहाँ का बच्चा बच्चा भी अपने आदर्श को प्रस्तुत करेगा। यह हमारी संकल्पना होगी, यह हमारी हम सभी का प्रयास होगा। आसमान से टपक करके आदर्श राज्य नहीं आएगा। यदि हम जब उत्तर प्रदेश के साथ थे तब हम ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश हमारी समस्याओं से अनभिज्ञ है, वह हमारी परेशानियों को महसूस नहीं करता है। तो आज तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनका आज जन्मदिन है, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से, उनके प्रयास से उन्होंने विषम और विपरीत परिस्थितियों में हमको हमारा उत्तराखंड दिया है। इसलिए आज के अवसर पर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नत होकर के उनके दीर्घायु की भी सामूहिक कामना और कल भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज उनका जन्मदिन है और जब अटल जी ने इस राज्य को बनाया था तो अटल जी ने सबसे पहले ये कहा था कि ये राज्य ये भारत का माथा होना चाहिए, ये भारत का गौरव होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि राज्य है, ये भारत का भाल राज्य है। इस राज्य में सब प्रकार की संभावनाएं हैं, इस राज्य की जवानी और इस राज्य का पानी पूरी देश और दुनिया के काम आता है। इस राज्य की जवानी पूरी राष्ट्र की रक्षा में हमेशा और हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि शहीद के नाम पर हमने इस सड़क का नामकरण करके उस शहीद को अपनी श्रद्धांजलि दी है। हम तो गौरवशाली हैं कि इस राष्ट्र की रक्षा में पहली पंक्ति पे खड़ी होकर मेरे राज्य के लोगों ने अपने आहुति और कुर्बानी दे करके उन नौजवानों ने भारत माँ का माथा हमेशा ऊंचा किया है। ऐसे बलिदानियों पर, ऐसे शहादत देने वाले देशभक्तों पर हमको गर्व होता है कि उत्तराखंड की धरती पर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हमको उनकी उन कुर्बानियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ये छोटा राज्य है लेकिन बहुत सुंदर राज्य है। आज भी यहाँ के लोगों के बारे में लोगों की बहुत अच्छी भावना है। लोग कहते हैं उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आकलुषित हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं। उत्तराखंड के बारे में जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमको घूर करके देखते हैं, वो हम में बद्री केदार के दर्शन करते हैं, देवभूमि के दर्शन करते हैं। और इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व से इस धरती को ऐसा सिंचन करें कि पूरी देश और दुनिया के लोग इस उत्तराखंड को देख करके, उत्तराखंड को पढ़ करके, उत्तराखंड के बारे में सुन करके गौरव महसूस करें। हमने हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये धरती का स्वर्ग है उत्तराखंड। इतने प्रकृति ने अद्भुत सौंदर्य बिखेरा है कि पूरी धरती पर ये स्वर्ग है। और स्विट्जरलैंड भी मेरे उत्तराखंड, स्विट्जरलैंड मेरे उत्तराखंड के सामने बौना नजर आता है, इतना सुंदर मेरा उत्तराखंड है। अभी तो दुनिया के लोगों ने देखा ही था मेरे उत्तराखंड को, इतना खूबसूरत उत्तराखंड है, उतने खूबसूरत वहाँ के लोग हैं, उतने खूबसूरत यहाँ के विचार हैं, सब कुछ सुंदर है हमारे पास। समस्या तो बनी रहती है। एक आदमी जो देश सब संपन्न देश है, सब सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन वो भी पागलों की तरह भटक रहे हैं। अर्थ कभी किसी को संपन्न नहीं बना सकता है, सुविधाएं जरूर उपलब्ध करा सकता है, लेकिन यदि सुख और शांति कहीं दे सकता है तो मेरी उत्तराखंड की धरती ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। और इसलिए हमारे पास 1,500 किलोमीटर लंबी नदियाँ हैं। कल ही भारत सरकार के सचिव आए थे, आए पुनीत जी, हमारे
महानगर के अध्यक्ष पुनीत जी भी आ गए, आए इधर आए, आए राजेश शर्मा जी, विनय जी आप भी आई, हमारे पूर्व अध्यक्ष और राजेश शर्मा जी वरिष्ठ नेता, शर्ता जी आई, आए राजीव जी। कल भारत सरकार के सचिव आए थे और पंचेश्वर बांध जिसका 1981 में भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच समझौता हुआ था, संधि हुई थी, कल उस संधि पर जब मुझे ये पता चला, जब पिछले दिनों पंचेश्वर बांध बनाने की बात आई तो मुझे पता चला कि लगभग 120 किलोमीटर में से 90 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र उसका हिंदुस्तान की धरती पर उत्तराखंड में है और जो जल संचित क्षेत्र है वो भी 70% और केवल 30% नेपाल की ओर है, लेकिन उसके बाद भी उस पर 50% समान रूप से उसमें सहभागिता की संधि हुई। कल मैंने इस पर आपत्ति व्यक्त की है, मैंने कहा कि उत्तराखंड यदि 70% जो वहाँ पर जो गांव डूबेंगे उनको दूसरी जगह पुनर्वास करना पड़ेगा और जो 120 किलोमीटर से 90 वर्ग किलोमीटर परिक्षेत्र केवल हिंदुस्तान का है, उत्तराखंड का है, इसलिए हमको स्वीकार नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि 50-50% नहीं, हमारा हिस्सा 70% होना चाहिए और नेपाल का 30% होना चाहिए। 6000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 6000 मेगावाट, और इसलिए हमारे पास जवानी भी है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास पुरुषार्थ भी है, संघर्षशीलता भी है, हमारे पास प्रखरता भी है, तो हमारे पास दृष्टि भी है। यदि धरती पर कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा क्षेत्र है जो गौरवशाली हो सकता है, जिसमें आयुर्वेद भी है, तो जिसमें गंगा भी है, तो जिसमें हिमालय भी है, वो केवल पूरी दुनिया में कहीं यदि ऐसा प्रदेश है तो केवल उत्तराखंड ही प्रदेश है और कोई दूसरा प्रदेश नहीं। गढ़वाली में एक कहावत है कि सगोरी नहीं बोल तो कल के कन। यदि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया हुआ होगा, हेमंत सर दीदी ठीक है चमोली से, यदि सब कुछ दिया होगा, दुनिया में आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तराखंड, देश की संस्कृति का प्राण है उत्तराखंड, आयुर्वेद का जन्मदाता है उत्तराखंड, आपको मालूम है चरक ऋषि की जन्मस्थली यही है, और ऐसी जो संजीवनी आप सबको तो पता है कि जब लक्ष्मण जी श्रीलंका में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी उत्तराखंड से लेकर के वहां श्रीलंका गए थे उनकी मूर्छा दूर करने के लिए, तो दुनिया के लोगों की मूर्छा भी हम ठीक कर सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास, दुनिया को बहुत सुंदरता भी दिखा सकते हैं। गंगा का एक बूंद पानी हजारों व्याधियों को खत्म करता है, वो गंगा भी हमारे पास है। हिमालय को तो देख करके पूरा दुनिया आज नतमस्तक होता है, तो सब कुछ तो है हमारे पास। जड़ी बूटी का ही केवल उत्पादन और दोहन करेंगे, अभी त्रिवेंद्र जी ने वो अभियान शुरू कर दिया माननीय कृषि मंत्री जी ने, और अभी रामदेव जी के साथ अनुबंध हुआ है, उन्होंने कहा है 1,500 करोड़ रुपए की जड़ी बूटी प्रति वर्ष वो मेरे उत्तराखंड से खरीदेंगे, 1,500 करोड़, हर हाथ में काम होगा और ऐसी जड़ी बूटियां होंगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। पुरुषार्थ तो हमको करना होगा, केवल किसी दुकान पर बैठ करके चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा, केवल चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, केवल टीका टिप्पणी करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा अपने पुरुषार्थ से, चाहे एक ही कदम क्यों न चले हम आगे, लेकिन हम पुरुषार्थ कर सकें, मेरा पूरा भरोसा है ये उत्तराखंड की धरती हमेशा पुरुषार्थ युक्त रही है। हमने तो दूसरों को दिया है, हमेशा हमको देने की भावना रही है, चाहे देश की संस्कृति का प्राण हो, जब भी दुनिया का कोई आदमी भटकता है तब वो इस धरती पर आता है, एक नया जीवन लेकर के जाता है, चाहे देश को के रक्षा के विषय में हमें अपने प्राणों को उत्सर्ग देने के, आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म दिवस भी है, वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी इसी धरती से पैदा हुए, जिन्होंने पेशावर कांड में यदि मुझे लगता है पेशावर का वो कांड नहीं हुआ होता तो हिंदुस्तान को आज़ादी भी नहीं मिलती। तो हिंदुस्तान की आज़ादी को दिलाने में भी इस उत्तराखंड की भूमिका अहम रोल रहा है हमेशा। और इसलिए उस पेशावर कांड के महानायक बेचन सिंह गढ़वाली जी को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये प्रदेश हमको बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्या हम सब लोग इसको विचार कर सकते हैं? छोटी छोटी समस्याओं में जो परिवार उलझा रहता है, जो व्यक्ति उलझा रहता है, जो समाज उलझा रहता है, जो राज्य उलझा रहता है, जो राष्ट्र उलझा रहता है, वो कभी लंबा नहीं चल सकता है। बड़े लंबे चलने के लिए, ऊंचे तक चलने के लिए लंबी सोच भी रखनी पड़ेगी, उतने बड़ा दिल, उतने बड़ा दिमाग, उतने बड़ा संघर्ष, उतने बड़ा विचार और उतने बड़ा समर्पण होना चाहिए, उतनी बड़ी संकल्प शक्ति भी होनी चाहिए। जिस समाज में, जिस व्यक्ति में ये सब निहित होते हैं, उस समाज और उस व्यक्ति और उस परिवार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोका करती। मेरा पूरा विश्वास है कि हम इस राज्य को बहुत अच्छे कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, बेमौसमी सब्जियाँ आज दिल्ली जा रही हैं हमारे यहाँ से। अभी त्रिवेंद्र जी ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं कृषि के क्षेत्र में। अभी वो चर्चा कर रहे थे कि चौलाई को 4,000 रुपये क्विंटल हमने तय कर दिया है। हमने तय कर दिया कि गेंदा के फूल कितने, जो ऊपर पहाड़ पर भी गेंदे का फूल होगा उसको भी हम यहाँ पर एडवांस में उनको पैसा देंगे। जो जड़ी बूटी की खेती करेंगे एडवांस में, 2 साल के बाद स्थिति ये होगी कि पूरे देश और दुनिया के लोग कतार लगा करके खड़े होंगे, लेकिन हमें पैदा करने की कुव्वत चाहिए ताकि लोगों को बता सकें कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास तुमको देने के लिए बहुत कुछ है। ये कोशिश कर सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो विशेष करके ज्ञापन मुझको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो इस चौक से, जो जोगी वाला चौक से लेकर के और आगे तक के जो आगे तक के जो ये चौड़ीकरण में जो लोग प्रभावित होंगे उनका भी कहना ठीक है। और इसलिए चीफ इंजीनियर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब हम इसको चौड़ीकरण कर रहे हैं तो लोग उससे जो प्रभावित हो रहे हैं उनके बारे में भी हम विचार करें, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी उससे जुड़ी है। छोटी छोटी दुकानें होंगी, क्या विकल्प दे सकते हैं? उनका मदद चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। सड़क तो वो भी चाहेंगे कि सड़क बने, लेकिन वो क्या मदद हो सकती है, इस दिशा में थोड़ा सा विचार कर लें। दूसरा जो अभी चर्चा हुई, आज वैसे भी छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चों, मेरी बहुत शुभकामनाएं, आज क्रिसमस डे पर आप सब लोग एकत्रित हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी आज के दिन की, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये स्कूल के बच्चों को, उनके डायरेक्टर साहब को, कहाँ है डायरेक्टर साहब, हाँ, आपको भी बहुत सारी बधाई। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे थे मुझसे, कहते बहुत सारी बातें कर, आपसे बात करने के लिए आऊँगा, ठीक है ना? ठीक है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जो त्रिवेंद्र जी ने चर्चा की पॉलिथीन की, आज पूरे पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया बहुत चिंतित है और हमारी, हम उस काम को पहल करके कर सकते हैं। पॉलिथीन जब नहीं था तब भी तो हम काम करते थे, तब लोगों के हाथों में रोजगार होता था। आज तो एक फैक्ट्री ने छोटी छोटी लाखों जो है वो बनाई, जिन हाथों को, मैं, मुझे मालूम है कि आज से 15-20 साल पहले लोग अपने अपने घरों पर अखबार की कतरन रखते थे और वो बनाते रहते थे, थैलियाँ बनाते रहते थे और बहुत सारे जो है हाथों को काम मिलता था, पर्यावरण की शुद्धता भी रहती थी। यदि हम पीछे के पारंपरिक चीज़ों में जाएंगे तो वैज्ञानिक तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने उन चीज़ों को किया जिनसे थोड़ा सा महट करके और आधुनिकीकरण के नाम पर बह रहे हैं। और इसलिए इस प्रदेश से, जो प्रदेश जिसको हम देश का आदर्श प्रदेश बनाना चाहते हैं, जो प्रदेश देवभूमि है, उस प्रदेश में ये जो पॉलिथीन है इसके कारण बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और इसलिए त्रिवेंद्र जी, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि अच्छा होगा कि कर दें, जो उन्होंने इस समय मांग रखी है। मैं सोचता हूँ आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उत्तराखंड सरकार इस राज्य को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा करती है, पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए हम घोषित कर रहे हैं। पॉलिथीन आज से पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा और उसके लिए हम कानून बनाएंगे, कानून बनाकर वैकल्पिक दिशा में भी उस पर विचार करेंगे कि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन यदि एक बार लोग मन बना देंगे तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुझे आप सबको बहुत बधाई देनी है, शुभकामनाएं देना है। मुझे थोड़ा सा और समय वक्त होता तो यहाँ के कुछ जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो प्रतिनिधिगण हैं, उनसे भी विचार सुनते। लेकिन ये अवसर बहुत जल्दी आगे आएगा जब हम सब लोग मिलेंगे। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।
पांच साल